तो ये चैतन्य चरितामृत का आदि लीला है, अध्याय 12 और श्लोक संख्या 3। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जय जय नित्यानंद जय अद्वैत धन्य। चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत प्रभु की जय हो, ये सभी धन्य है। श्री चैतन्यामृतरोर द्वितीय स्कंद रूपिणः श्रीमद अद्वैत चंद्रस्य शाखा रूपन गणान नुमा। अद्वैत प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष की दूसरी शाखा हैं, और साथ में उनके जो अनुचर हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको भी प्रणाम कर रहे हैं, जो उनके और शाखा बनते हैं। वृक्षेर द्वितीय स्कंद आचार्य गोसाई तार ज्योत सख होइला तारे लेखनाई। अद्वैत प्रभु ये वृक्ष की दूसरी शाखा है, और कई शाखाएं हैं जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। चैतन्य मालिक कृपा जले रसे चान सही जले पुष्ट स्कंद भाड़े दीने दीने। तो महाप्रभु एकमात्र माली हैं, और उन्होंने इस वृक्ष के ऊपर, इस कृपा वृक्ष के ऊपर जल डाला है, सेचन किया है, और सारी शाखाएं और अन्य शाखाएं पुष्ट हुई हैं दिन प्रतिदिन। सही स्कंदे ज्योत प्रेम फलो पजीला सही कृष्ण प्रेम फले जगत भरीला। चैतन्य महाप्रभु के इस वृक्ष रूपी जो फल है, ये प्रेमय फल, जो चैतन्य वृक्ष का प्रेमय फल है, वो इतना बड़ा है कि संपूर्ण संसार को इस ने आप्लावित कर दिया है कृष्ण प्रेम से। सही कृष्ण प्रेम फले जगत भरीला। आगे अद्वैताचार्य के अनुयायियों के बारे में बताया गया है, और इसमें बताया गया किस तरह से अद्वैताचार्य के 6 पुत्र थे, और उसमें से जो 2 पुत्र थे वो उनके सही अनुचर बने। केह तो आचार्य आज्ञा है केह तो स्वतंत्र स्वमत कल्पना करे दैवे परंतंत्र। यानी कि कुछ शिष्यों ने तो आचार्य की आज्ञा का पालन किया, लेकिन अन्य जो है वो मार्ग से भटक गए, उन्होंने अपने ही मत प्रस्तुत किए देवी माया के अधीन होकर। आचार्य रे मत जयी सही मत सार तारा आज्ञा लोंघी चले सही ते आसार। बहुत सुंदर बात है, यहां पे कह रहे हैं कि गुरु की आज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन में। द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर्स एक्टिव प्रिंसिपल इन स्पिरिचुअल लाइफ। तार आज्ञा लौंगिक चले सही ते आसार। जो भी गुरु की अवज्ञा करता है वो तुरंत ही आसार बन जाता है, तत्काल ही आसार बन जाता है, रसविहीन हो जाता है, नीरस हो जाता है। तो यहां पर कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि उन नामों की मैं चर्चा नहीं करना चाहता जो बिल्कुल व्यर्थ हैं, जिन्होंने अवज्ञा की उनके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता। मैं तो उन्हीं के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जो कि उपयोगी हैं, भक्त जो गुरु की आज्ञा का पालन किए, उनके बारे में हम लोग सिर्फ चर्चा करें। और इसमें जो एक बड़ी शाखा अद्वैत आचार्य की, उनके स्वयं अपने पुत्र हैं अच्युतानंद, और जीवन के प्रारंभ से ही उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा की, उनके चरण कमलों की सेवा की। और आगे ये भी बताया गया इसमें कि कैसे चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य की बहुत बहुत आदर करते थे उनका, और अद्वैताचार्य उनके पिता से भी बड़े थे, उम्र में पिता से भी बड़े थे, लेकिन फिर भी अद्वैत प्रभु अपने आप को महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का सेवक समझते थे। श्री अद्वैत प्रभु और ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु यानी कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी। और अद्वैतपुरी और ईश्वरपुरी इन दोनों ने दीक्षा ली थी श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से, जो कि नित्यानंद प्रभु के भी गुरु हैं। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी शांतिपुर में अद्वैताचार्य का घर था, सीता ठाकुरानी के साथ वहां रहते थे, और अद्वैताचार्य के उस घर में ही श्रीपाद माधवेंद्रपुरी भी आए थे, और वहीं पे अद्वैताचार्य ने माधवेंद्रपुरी से, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण की थी। और यही वो शांतिपुर है जहां पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आकर भी रहे दो बार, और रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई थी। और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के तिरुभाव दिवस के उपलक्ष में प्रत्येक वर्ष हम देखते हैं किस तरह से वहां पे बड़ी तादाद में प्रसाद का वितरण होता है। चैतन्य चरितार्थ में एक जगह लिखा गया है कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के तिरुभाव दिवस के दिन कोई अगर शांतिपुर में भगवत प्रसाद ग्रहण करता है तो उसको निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। प्रसाद ग्रहण करता है या प्रसाद सेवा करता है, ये वहां की महिमा है, शांतिपुर की महिमा है। शांतिपुर में उनका अपना घर अद्वैत आचार्य का, उनका घर श्रीधाम मायापुर में भी था, श्रीवास आंगन के बिल्कुल नजदीक अद्वैत आचार्य का घर, और साथ में गदाधर पंडित का भी घर है, दोनों का घर। और उनके पास किसका घर है? निमाई का घर, जगन्नाथ में श्री सची माता घर योगपीठ में। तो ये सब एक ही पंक्ति में है। महाप्रभु के आने से पहले ये सब अवतरित हो रहे हैं, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, ये सब क्यों अवतरित हो रहे हैं? महाप्रभु का स्वागत करने के लिए। महाप्रभु के आने से पहले उनके अंशावतार और नित्यानंद प्रभु, ये सब पहले से प्रकट हो रहे हैं। अद्वैत आचार्य ने देखा कैसे नवद्वीप में अधिकांश लोग चंडी और काली की पूजा कर रहे हैं और कोई कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है, नाम संकीर्तन नहीं हो रहा है, कोई कृष्ण भक्ति को नहीं अपना रहा है। चंद ही लोग हैं जो वैष्णव हैं, उनको भी छुप छुप कर हरि नाम लेना होता है। इसलिए अद्वैत आचार्य बहुत दुखी हुए और अन्य वैष्णव भी दुखी हुए। तो अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की भगवान से, स्वयं कृष्ण से। अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण हैं, नित्यानंद प्रभु स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन अद्वैत आचार्य इनको महाविष्णु का अवतार बताया गया है। गदाधर पंडित शक्ति तत्व हैं, श्रीवास पंडित जीव तत्व हैं, और ये सब मिलकर पंच तत्व हैं। तो इस तरह अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की। प्रत्येक दिन वो शालिग्राम शिला को शांतिपुर के पास ही गंगा जी बहती थी साथ में, और वहां पर प्रत्येक दिन जाकर तुलसी दल से और गंगा जी के जल से शालिग्राम शिला की वो सेवा पूजा करते और प्रार्थना करते कि जल्दी आप प्रकट हो हे कृष्ण, अगर आप नहीं प्रकट होंगे तो फिर मैं, मेरे पास एक ही उपाय रह जाएगा, मैं सुदर्शन चक्र से इन सबका संहार कर दूंगा, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, और इन सब का, अगर इन सब का उद्धार आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, तो आपके ऊपर हम लोग निर्भर हैं। तो इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं अद्वैत आचार्य, प्रार्थना करते थे, और उनके प्रार्थना करने मात्र से ही हम देखते हैं किस तरह चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए योगपीठ में और उनका नाम पड़ा निमाय, और उनको नाम ये निमाय जानते किसने दिया था? सीता ठाकुरानी ने, जो अद्वैत आचार्य की पत्नी के रूप में प्रकट हुए थे। सीता ठाकुरानी ने चैतन्य महाप्रभु का नाम दिया निमाय, नीम वृक्ष के नीचे वो प्रकट हुए। और भी तरह तरह के नाम चैतन्य महाप्रभु को मिले, जैसे शचिनंदन गौरहरि, शची सुता, बहुत सारे नाम उनको मिले। तो अद्वैत आचार्य के बारे में ये वर्णन यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रारंभ में तत्व की चर्चा कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु वास्तव में कौन है तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अद्वैत आचार्य कौन है उनके तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु कौन है उनके तत्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं। ये सब विष्णु तत्व हैं, ये तीनों विष्णु तत्व हैं, तो इन तत्वों की जानकारी होना जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे आदि लीला पहले 13 अध्याय में चैतन्य चरितामृत में केवल दर्शन सिद्धांत की ही चर्चा हुई है, लीलाओं की चर्चा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नहीं प्रारंभ की। हालांकि प्रारंभ में उन्होंने इस बात को स्थापित कर दिया, क्या एकल ईश्वर कृष्ण आरस सब भृत्या, इसको तो प्रारंभ में ही स्थापित कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस सिद्धांत को स्थापित किया। जैसे अद्वैत आचार्य के बारे में बता रहे हैं, अद्वैत आचार्य के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह वो महाविष्णु के अवतार हैं और चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए आए हैं, पहले ही पहुंच गए। तो अद्वैत आचार्य उम्र में बहुत बड़े थे, काफी उम्र में बड़े थे। तो यहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, वंदे तम श्रीमद अद्वैताचार्यम अद्भुत चेष्टितम यस्य प्रसादा अज्ञोपि तत्स्वरूपम निरूपयेत। मैं अद्वैताचार्य को प्रणाम करता हूं जिनके कार्यकलाप अद्भुत हैं, उनकी कृपा से एक मूर्ख व्यक्ति भी उनके लक्षण का, उनके चरित्र का वर्णन कर सकता है, उन्हीं की कृपा से है ना हम गुरु का गुणगान कर पाते हैं, कृष्ण का गुणगान कर पाते हैं, उनकी कृपा से है ना। तो कई बार देखा जाता है कि शिष्य बहुत अधिक सफलता प्राप्त करता है, गुरु से ज्यादा सफलता प्राप्त कर लेता है कई बार शिष्य, लेकिन उस पर भी शिष्य को यही सोचना चाहिए कि गुरु ऐसे चाहते हैं, गुरु ऐसा चाहते हैं कि शिष्य ज्यादा सफलता प्राप्त करे, इस कारण से शिष्य सफलता प्राप्त करता है, तो उसमें भी गुरु की कृपा ही होती है, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो यहां अद्वैत आचार्य का कोई अगर वर्णन कर पाता है, उनका गुणगान कर पाता है, तो उन्हीं की कृपा से हम लोग उनका गुणगान कर सकते हैं। जब तक अद्वैत आचार्य की कृपा नहीं होगी हम उनका गुणगान नहीं कर पाएंगे। कृष्ण का गुणगान करने के लिए आपको कृष्ण की कृपा चाहिए, या स्पष्ट रूप से वैष्णव की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। तो भगवत गुणगान के लिए, भगवान का गुणगान करने का सुअवसर सभी प्राणियों को प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज प्राप्त होता है तब जाके ये अवसर प्राप्त होता है कि वो गुणानुवाद कर सके भगवान का। वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने अम्बरीश महाराज जिस तरह से श्री कृष्ण का गुणगान करते थे भगवान का गुणगान करते थे, तो इस तरह हमें समझना है इन बातों को। अद्वैत आचार्य को शुद्ध नाम साधन भक्ति का आश्रय भी बताया गया है, साधन भक्ति का आश्रय, और शुद्ध नाम का आश्रय है शिवास पंडित। मतलब ये सब तत्व हैं, पंच तत्व का रहस्य हमें समझना चाहिए। यानी कि अद्वैत आचार्य की कृपा से कोई वैदिक भक्ति से राग मार्ग में जा पाता है। गदाधर पंडित भाव आश्रय है, नित्यानंद प्रभु प्रेम आश्रय है, और चैतन्य महाप्रभु रस आश्रय है। श्रीवास पंडित शुद्ध नाम के आश्रय हैं, और अद्वैत आचार्य साधन भक्ति वैदि भक्ति वैदि साधन भक्ति से हमें राग मार्ग में ले जाते हैं, उनकी कृपा होती है तो उनकी कृपा होती है तो नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है और फिर महाप्रभु की कृपा होती है। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। कौन कह रहा है? नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि आपकी जब कृपा होगी तो हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी, महाप्रभु की कृपा मिलेगी। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य के बारे में बताया जा रहा है यहां पर। इसलिए पंचतत्व मंत्र का जब उच्चारण करते हैं तो पूरा करते हैं हम, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। ये पंचतत्व मंत्र का उच्चारण हमें पूर्ण रूपेण करना चाहिए और उसके बाद फिर महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि यहां पर लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, कई कई बार महाप्रभु का लाभ उठाते हुए कुछ ऐसे जो मार से भटके हुए भक्त हैं वो अपना ही महामंत्र का निर्माण करते हैं और गाते हैं, भजनिताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, या श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। तो ये जो वास्तव में हमारी परंपरा में स्वीकार नहीं किया जाता है, यहां पर लिखा है तात्पर्य में आदि लीला सातवें अध्याय का जो चौथा श्लोक है उसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, पंचतत्व मंत्र का पूरा उच्चारण होना चाहिए और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण होना चाहिए। ये अब संप्रदाय 13 प्रकार के हैं जिनका पता लगाया ठाकुर भक्ति विनोद ने, शिल भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने। अधिकांश ये ओडिशा में और बंगाल में पाए जाते हैं, तो उस तरह से इनका कीर्तन भी ऐसे ही करते हैं, वो हरे कृष्ण महामंत्र का पूरा कीर्तन नहीं करते हैं, वो ऐसा कीर्तन करते हैं, क्या बोलते हैं, भजो निताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि हम लोग मार्ग से ना भटकें, जो परंपरा के द्वारा दिया गया है विधि दी गई है उसी विधि का हमें पालन करना है, अपना कोई नया हमें रास्ता नहीं अपनाना है। जो हमारे आचार्य दे गए हैं सतोवृत्ति का मतलब यही है, श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं सतोवृत्ति कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो हमें रास्ता दिया है मार्ग बताया है उसी रास्ते में उसी मार्ग में चलकर हमें भक्ति को आगे बढ़ाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो और आगे अच्युतानंद के बारे में बताया जा रहा है, अच्युतानंद प्रभु के बारे में बताया जा रहा है कि अच्युतानंद प्रभु अद्वैत आचार्य के पुत्र थे, और ये एक घटना बताई जा रही है यहां पर कि चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाओं को व्यक्त करते हैं नवदीप में, इससे पहले राम पंडित शिवास ठाकुर के जो भाई थे, रमाई पंडित भी कहते हैं इनको, उनको शांतिपुर जाने के लिए कहा अद्वैत आचार्य को वापस लाने के लिए। तो अच्युतानंद उनके अपने पिता से मिले थे और ये बताया गया अद्वैतर तन्य अच्युतानंद नाम परम बालक सेहो कांदे अविराम। तो चेते अच्युतानंद जो है वो रुदन करते हुए दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे थे, और एक बार फिर एक बार चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को पीटा, उनको मारा। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत का वर्णन वो कर रहे थे मायावाद दर्शन के अनुसार, जो भक्ति योग के विरुद्ध था। तो अच्युतानंद भी वहां पर मौजूद थे, और ये सब जो इस प्रकार के हादसे हैं 2 या 3 साल पहले हुए थे महाप्रभु के संन्यास लेने से पहले, और चैतन्य भागवत अंत्यखंड में भी वर्णन मिलता है अध्याय 1 में कि अच्युतानंद जो अद्वैत आचार्य के पुत्र हैं वो महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अच्युतानंद प्रारंभ से ही चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, और ऐसी कोई सूचना नहीं मिलती कि अभी अच्युतानंद का कोई विवाह हुआ हो, लेकिन अद्वैत आचार्य के परिवार के बहुत बड़ी शाखा हैं, और एक पुस्तक से शाखा निर्णयामृत नाम पुस्तक है, उससे पता चलता है कि अच्युतानंद गदाधर पंडित के शिष्य थे, गदाधर पंडित से दीक्षा ली थी उन्होंने। और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया उन्होंने जगन्नाथपुरी में और वहां पर वो सेवा किए। और चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि अद्वैत आचार्य के पुत्र अच्युतानंद और जगन्नाथपुरी में रहे, महाप्रभु की उन्होंने शरण ली, जिस तरह से गदाधर पंडित भी जगन्नाथपुरी में आखिरी समय में रहे चैतन्य महाप्रभु के साथ। हम देखते हैं कि महाप्रभु रथ यात्रा के सामने जब कीर्तन करते थे और नृत्य करते थे तो कई बार अच्युतानंद प्रभु के नाम का वर्णन किया गया है। अलग अलग टोलियां बनती थी कीर्तन करते थे तो वहां हम देखते हैं कि अच्युतानंद प्रभु का नाम आता है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि प्रमाणिक स्रोत से पता चलता है। और आगे बता रहे हैं तो अच्युतानंद नृत्य भी करते और कीर्तन भी करते, लेकिन उस समय उनकी उम्र कितनी थी, केवल 6 साल की थी, केवल 6 साल की थी। और कुछ लोगों का मत यह है कि वो कार्तिकेय के अवतार हुए हैं, कार्तिकेय जो शिव जी के पुत्र हैं कार्तिकेय। और कुछ अन्य लोगों का कहना है कि वो अच्युता नाम की गोपी हैं ब्रज लीला में। और गौर गणदेश दीपिका श्लोक संख्या 88 में ये दोनों बात प्रमाणित होती हैं। और अन्य किताब है नरोत्तम विलास नरहरि सरकार ठाकुर के द्वारा लिखित, नरहरि दास के द्वारा लिखित, उन्होंने बताया कि खेतुरी उत्सव में कैसे अच्युतानंद प्रभु मौजूद थे। और नरहरि दास के अनुसार अच्युतानंद प्रभु ने अपना आखिरी समय बिताया शांतिपुर में, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु मौजूद थे तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के नजदीक रहे वो जगन्नाथपुरी में गदाधर पंडित के साथ। तो ये कुछ सूचना है। तो बता रहे हैं कि जो अद्वैत आचार्य के 6 पुत्रों में से 3 यानी कि अच्युतानंद, कृष्णमिश्र और गोपालदास, तो ये 3 पुत्र थे वो बड़े ही समर्पित थे और ये चैतन्य महाप्रभु के शरण में थे। जैसे कि हमने बताया अच्युतानंद ने विवाह नहीं किया, तो अद्वैत आचार्य के जो दूसरे पुत्र थे कृष्णमिश्र, उनके 2 पुत्र हुए रघुनाथ चक्रवर्ती और डोल गोविंद। तो रघुनाथ चक्रवर्ती के वंश जो है अभी भी शांतिपुर में रहते हैं, मदन गोपाल पाड़ के पड़ोस में ही, गनकर मिर्जापुर और कुमार खाली। डोल गोविंद के 3 पुत्र हुए चांड और कंदर्व और गोपीनाथ। और कंदर्व के वंश मालदा नाम के जिले में रहते हैं, जिकालवादी गांव में। और गोपीनाथ के 3 पुत्र हुए श्रीवल्लभ, प्राणवल्लभ और केशव। श्रीवल्लभ के वंश जो है वो मसियादार नाम के गांव में रहते थे, दामुकदिया और चांदीपुर। और श्रीवल्लभ के पारिवारिक वंश के बारे में बताया गया है, और उनके सबसे जो बड़े पुत्र थे गंगा नारायण, उनके बारे में वर्णन मिलता है। और श्रीवल्लभ के सबसे जो छोटे पुत्र थे राम गोपाल, उस समय की बात है, ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिख रहे हैं कि वो अभी भी रहते हैं दामुकदिया, चांदीपुर और शोलामरी। और प्राणवल्लभ के वंशज और केशव अभी उथली में रहते हैं। प्राणवल्लभ के पुत्र रत्नेश्वर थे और उनके पुत्र थे कृष्ण राम, और उनके छोटे पुत्र हुए सबसे लक्ष्मी नारायण, और उनके पुत्र हुए नवकिशोर। नवकिशोर के 2 पुत्र हुए राम मोहन, और उनके सबसे बड़े पुत्र हुए जगबंधु, और उनके 3 पुत्र हुए वीरचंद्र, जिन्होंने संन्यास वेश लिया और महाप्रभु का विग्रह स्थापित किया कटवा में। और राम मोहन के 2 पुत्र हुए जिन्होंने, उनका नाम था बड़ा प्रभु और छोटा प्रभु, और उन्हें नवदीप धाम परिक्रमा का उद्घाटन किया। और वैष्णव मंजूषा नाम एक पुस्तक है, इसमें ये जो अद्वैत प्रभु के पुत्र हैं कृष्णमिश्र, उनकी वंशावली का वर्णन मिलता है। कहने का अर्थ ये, आप कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ये सब वर्णन की क्या आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर इसलिए बताना चाहते हैं कि ये सब वंशावली जो है बता रहे हैं, ये है वंशावली, असली वंशावली। कल कोई कहे कि हम भी अद्वैत आचार्य के वंश में हैं और गलत प्रचार शुरू कर दे, इस कारण से हमारे पूर्ववर्ती आचार्य लोग श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उन्होंने काफी शोध किया और प्रामाणिक हमें सूचना दी है चैतन्य चरितामृत का भाष्य लिखते हुए। चैतन्य चरितामृत के ऊपर दो प्रामाणिक भाष्य हमारी परंपरा में है, एक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा जिसको गौड़िया भाष्य कहते हैं, और दूसरा है श्रील भक्तिनाथ ठाकुर के द्वारा जिसको अमृत बहा भाष्य कहते हैं। तो ये दोनों भाष्य के लेकर ही, दोनों की टीका लेकर श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य प्रस्तुत किए हैं। हाँ, चैतन्य चरितामृत में तो पढ़ते हैं, इंग्लिश में तो है हमारे पास, दोनों इंग्लिश में ही है। जो हमारे पास जो चैतन्य चरितामृत है वो इन दोनों की टीकाएं हैं और दोनों इंग्लिश में एक साथ मिल रहा है हमें, प्रभुपाद ने दोनों एक साथ दे दिया। तो इस तरह से उनके वंश के बारे में, उनके पुत्र के बारे में बहुत कुछ वर्णन मिलता है। यहां बता रहे हैं कि अद्वैत आचार्य की जो शाखा है उनका सेचन हुआ, जो कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया जल है उससे सेचन हुआ, और उन सबको हमें प्रमाणिक आचार्य मानना चाहिए। हालांकि बाद में हम देखते हैं कि अद्वैत आचार्य के प्रतिनिधियों को दो भागों में बांटा गया, एक वास्तव में जो उनकी परंपरा में थे, शिष्य परंपरा में, और दूसरे जो है जो वास्तव में प्रमाणिक नहीं थे। और जो चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के अनुसार चले, उनका प्रचार प्रसार हुआ, उनका यश तीनों तरफ फैला, लेकिन जो वास्तव में उनके अनुचर नहीं थे और उनके आगे का जिन्होंने उल्लंघन किया, वो मार्ग से भटक गए और सूख गए, ऐसा वर्णन मिलता है। तो एक बार की घटना है, हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश अपना प्रकट किया था शिवास आंगन में, शिवास पंडित के घर पे, और वहां पर अहितु की कृपा प्रकट की महाप्रभु ने और सभी भक्तों को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। लेकिन जब शची माता की बारी आई तो उन्होंने कहा कि शची माता को मैं कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया है। क्योंकि जब विश्वरूप ने संन्यास लिया था, जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, तो शची माता ने यह विचार किया कि अद्वैत आचार्य ने ही प्रेरित किया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि विश्वरूप प्रत्येक दिन शांतिपुर जाते थे संन्यास लेने से पहले, और वहां जाकर अद्वैत आचार्य के घर पर प्रत्येक दिन कृष्ण कथा होती थी, तो कृष्ण कथा का श्रवण करते थे। और कई बार तो चैतन्य महाप्रभु जो उस समय बाल्यावस्था में थे, तो अद्वैत आचार्य के अतिरिक्त तो और कोई इनको पहचान नहीं रहे थे, लेकिन उनके सौंदर्य को देखकर, निमाई के सौंदर्य को देखकर सब लोग चकित हो गए और कृष्ण कथा बंद हो गई। कृष्ण कथा चल रही थी, लेकिन जैसे ही सबने निमाई को देखा तो कथा विराम दिया और सब लोग निमाई के सौंदर्य का आस्वादन करने लगे, और निमाई फिर विश्वरूप को वापस ले जाते कि शची माँ इंतजार कर रही हैं, प्रसाद का समय हो गया है, आपके लिए संदेशा भेजा, आप चलें वापस। तो इस प्रकार, इसी कारण से शची माँ जो है वो विचार करने लगी कि अद्वैत आचार्य ने ही प्रेरित किया होगा विश्वरूप को, उनके संग के कारण हुआ है, उनके संघ के कारण इसने संन्यास लिया है ना। तो हम भी कई बार देखते हैं, लोग हमारे संस्था से जुड़ते हैं, कई भक्त लोग, तो घर वाले ही सोचते हैं, है ना, तो उसमें कुछ विशेष भक्तों के ऊपर आरोप लगाया जाता है, उन्हीं भक्तों को पकड़ा जाता है बार बार, उनको लगता है यही सब के नेता हैं, इन्हीं के वजह प्रचार की वजह से हमारा लड़का हाथ से निकल गया। तो ये परंपरा है हमारी, ये तब से चला आ रहा है। तो इस प्रकार अपराध हुआ और अद्वैत आचार्य को बुलाया गया, और अद्वैत आचार्य जब भाववश में नृत्य कीर्तन कर रहे थे और गिर पड़े थे तो उनके चरणों की धूली ली शचीबा ने, और जैसे ही शचीबा ने उनके चरणों की धूली ली और मस्तक पे लगाया तो वो ऐसा अपराध से छुटकारा पा लिए। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शची माँ को भी कृष्ण प्रेम दिया। तो ये सब शिक्षाप्रद कथाएं हैं हमारे लिए। शची माँ तो जगत माँ है, स्वयं यशोदा है, माता यशोदा तो उनसे कोई अपराध तो हो नहीं सकता, लेकिन हम जैसे साधकों के लिए चेतावनी है कि किसी भक्त के प्रति हमें अपराध नहीं करना चाहिए। खासकर आचार्य, यहाँ पर अद्वैत आचार्य आचार्य के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। आचार्य माँ बिजानियम नाम मन्येत करिचित, भागवत में लिखा है ना, भगवान कृष्ण क्या कह रहे उद्धव जी को, आचार्य को मुझ जैसा ही जानो, उनसे कभी द्वेष मत करो, सर्व देवमय गुरु हूं, वो क्या है सभी देवताओं के गुरु हैं, यानी कि सभी देवताओं को एकत्रित कर दिया जाए तो वास्तव में वो सब भी ऐसे गुरु ऐसे वैष्णव का आश्रय लेते हैं। तो इस प्रकार हमें सावधान रहना चाहिए। तो ये घटना बताई जा रही है जगन्नाथपुरी की, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बाद की घटना है। और अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर रहे थे फूल से और तुलसी से, और चैतन्य महाप्रभु बदले में उन्होंने अद्वैत आचार्य की पूजा की फूल से और तुलसी से, और साथ में क्या मंत्र बोला, योसी सोसी नमोस्तुते, योसी सोसी नमोस्तुते, आप जो भी हैं, आप जो भी हैं मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो अद्वैत आचार्य उनके बाद, उसके बाद उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए निमंत्रित किया, निमंत्रण दिया। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने नंद उत्सव बनाया और महाप्रभु स्वयं ग्वाले के रूप में अपने आप को श्रृंगार किए, बड़ा अच्छा उत्सव बनाया गया। और उसके बाद महाप्रभु के भक्त लोग उन सब ने विजयदशमी का उत्सव भी मनाया, वो दिन जब भगवान राम ने लंका के ऊपर विजय पाई थी, इस तरह से वर्णन मिलता है। तो यहां बताया जा रहा है कि एक दिन अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया, तो ये सोचा अद्वैत आचार्य ने कि जब महाप्रभु आएंगे तो उनको बहुत सुंदर तरीके से उनको प्रसाद, क्यों प्रसाद की सेवा करेंगे। और क्या हुआ, लेकिन जो और सन्यासी भी पहुंचे अद्वैत आचार्य के पास प्रसाद ग्रहण करने के लिए, तो बहुत तेजी से बारिश हो गई, बरसात हो गई और उनके वो घर पहुंच नहीं पाए। तो क्या हुआ, अद्वैत आचार्य की क्या इच्छा थी कि केवल महाप्रभु आए, और वो उनकी इच्छा पूरी हुई क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी तो और अन्य सन्यासी तो आ नहीं पाए, लेकिन महाप्रभु पहुंच गए तो महाप्रभु ने फिर प्रसाद ग्रहण किया। हरदास ठाकुर भी शांतिपुर में आके अद्वैत आचार्य से मिले थे, और अद्वैत आचार्य हरदास ठाकुर की विशेष सेवा करना चाहते थे, और क्योंकि समस्या ये थी जो श्राद्ध का प्रसाद है, अद्वैत आचार्य चाहते थे कि हरदास ठाकुर ग्रहण करें, क्योंकि वहां और स्मार्ट ब्राह्मण थे जिनको बुलाया जा सकता था, लेकिन अद्वैत आचार्य ने हरदास ठाकुर को निमंत्रण दिया। तो अद्वैत आचार्य से हरदास ठाकुर पूछते हैं कि आप मुझे ये अन्न देते हैं, प्रसाद देते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि आप तो बड़े बड़े ब्राह्मणों के बीच में रहते हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन बिना किसी शर्म के आप तो मेरे जैसे नीच कुल में जन्म लिए, नीच जाति में लिए जन्म लिए हुए व्यक्ति को आप प्रसाद के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, मुझे इतना आदर दे रहे हैं, क्या कारण है इसका। तो इसलिए मुझे बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि आपका जो आचरण है बड़ा अलौकिक है, इस कारण से मैं आपसे डरता हूं आपसे बात करने में, मुझे पता नहीं मैं आपसे क्या बात करूं। हरदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के शरण थे, लेकिन हरदास ठाकुर को ठीक नहीं लग रहा था कि अद्वैत आचार्य उनको प्रसाद के लिए बुलाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हरदास ठाकुर तो स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार हैं और उच्च कोटि के वैष्णव थे। तो अद्वैत आचार्य उत्तर देते हैं कि हरदास तुम भयभीत मत हो, जो शास्त्रों का निष्कर्ष है उसी के आधार पर मैं आचरण कर रहा हूं, मैं शास्त्रों के आधार पर ही आचरण कर रहा हूं। क्योंकि आचार्य का मतलब ही यही है, जो गुरु साधु और शास्त्र के आधार पर आचरण करता है, उसका आचरण जो है वो कपोल कल्पित नहीं होता है, मनोकल्पना नहीं होती है। इसलिए हरदास ठाकुर साधु आचार्य कहते हैं कि आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अद्वैत आचार्य बता रहे हैं यहां पर तात्पर्य, प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनको तथाकथित ब्राह्मण समाज से बिल्कुल भी भय नहीं था, वो नहीं डरते थे। किराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा अभीर शुंभा यमुना खषादया जन्ने च पापा यद अपाशाशया शुद्धंती तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। मतलब शूद्र क्या और अन्य जाति के लोग भी जो वर्णाश्रम धर्म में भी नहीं आते हैं, यावन खषादय चंडाल मलेच्छ, ये सब भी शुद्ध हो सकते हैं कृष्ण का नाम लेने से, भक्ति करने से, ये लोग भी पवित्र हो सकते हैं। तो कृष्ण भावना का आंदोलन ये संपूर्ण समाज के लिए है। कहते हैं तुम्ही खायले होए कोटि ब्राह्मण भोजन, ए तो बोली श्राद्ध पात्र कराये भोजन। श्राद्ध पात्र आप स्वीकार करें, क्योंकि आपको अगर मैं प्रसाद खिलाता हूं तो 1 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर है। 10 मिलियन तो 1 करोड़ हो गया ना, नहीं मिलियन, 10 मिलियन ठीक है, 1 करोड़ हो गया, 1 मिलियन 10 लाख, 10 मिलियन 1 करोड़ है ना। तो अद्वैत आचार्य उनको बार बार उनको जोर दिए, नहीं नहीं आपको प्रसाद ग्रहण करना होगा, प्रसाद लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, लीजिए। तुम ही खायले होए कोटि ब्राह्मण भोजन, एत बोली श्राद्ध पात्र करायला भोजन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हरदास ठाकुर को प्रसाद खिलाया उन्होंने अद्वैताचार्य ने। तो अद्वैताचार्य हमेशा मग्न रहता था, उनका विचार कैसे इस संसार में जो पतित जीवात्मा है उनका उद्धार किया जाए, जगत का निस्तार कैसे किया जाए। पूरा संसार अभक्तों से भरा हुआ है, इनका उद्धार कैसे होगा, क्या होगा इन लोगों का, इस प्रकार चिंता करते थे। यहां बता रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि अद्वैत आचार्य ने वैष्णव संप्रदाय का जो आदर्श है वो स्थापित किया, और आचार्य जो है हमेशा चिंतित रहते हैं पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं तथाकथित आचार्य के नाम तो ले लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं अपने आप को आचार्य के रूप में, मंदिर का निर्माण भी कर लेते हैं, लेकिन अपने वास्तव में उद्देश्य क्या होता है उनका, अपना परिवार चलाने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए वो मंदिर बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को गोस्वामी आचार्य नहीं कहा जा सकता। तो मंदिर के माध्यम से अपना जीवन निर्वाह करना या अपना घर चलाना, ये वास्तव में एक आचार्य का लक्षण नहीं है, ऐसा व्यक्ति दुराचारी होता है। तो भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर यहां लिख रहे हैं टीका में, इससे अच्छा है कि सड़क में झाड़ू मार लो, या कोई सही तरीके से धन कमाया जाए बाहर जाके नौकरी करके, लेकिन इस प्रकार ढोंगी नहीं बनना चाहिए, बात का ध्यान रखना है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर के तात्पर्य बड़े अच्छे हैं, प्रभुपाल ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो इसी कारण से हम देख रहे हैं अद्वैत आचार्य ने, जैसे हमने पहले ही बताया कि उन्होंने शपथ ली कि कृष्ण को यहां पर मैं लाकर ही लाऊंगा, और इस तरह से हरदास ठाकुर भी गंगा जी के तट पर गुफा में प्रत्येक दिन 3 लाख नाम लेते, संकीर्तन करते, हरि नाम लेते, और इन्हीं के कारण चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु के आने के कई कारण हैं, उसमें से एक कारण है अद्वैत आचार्य की प्रार्थना, अन्य कारणों के बारे में तो हम यहां चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये कारण है। तो ये कारण क्या है, अद्वैत आचार्य की पुकार। तो अद्वैत क्यों कहा जाता है उनको, अद्वैत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हरि से अभिन्न है। अद्वैत का अर्थ ये नहीं है, अद्वैत का अर्थ एक और अर्थ क्या होता है, अद्वैत का अर्थ वास्तव में होता है जिसमें कोई द्वैत ना हो, है ना। सच्ची मां तो यहां तक विचार करने लगी, जैसे हमने पहले बताया कि नाम तो इनका अद्वैत है लेकिन ये तो द्वैत से भरे हुए हैं, डबल रोल है इनका। हाँ, यहां तो अच्छी अच्छी बातें होती हैं, पीछे से प्रचार हो रहा है। तो इस प्रकार विश्वरूप ने संन्यास ले लिया तो उस कारण सच्ची माता उस समय बहुत दुखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने क्षमा मांगी जैसे हमने बताया। तो अद्वैत आचार्य भगवान से अभिन्न है और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हैं, इसलिए उनका नाम आचार्य है, क्योंकि वो भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हैं इसलिए उनका नाम आचार्य है। अद्वैत आचार्य, अद्वैत क्यों है, क्योंकि भगवान से अभिन्न है, और आचार्य क्यों है, क्योंकि वो भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हैं अपने आचरण के द्वारा, इसलिए वो भगवान है। और साथ में एक भक्त के रूप में प्रकट हो रहे हैं, आचार्य के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये कुछ बातें हैं इसमें। अद्वैत आचार्य का एक और नाम बताया गया मंगला, उनका एक और नाम है मंगला, मंगल यानी सब मंगल करने वाले, मंगला अंग्रेजी में तो मंगला ही लिखते हैं ना, लेकिन वास्तव का जो नाम है मंगल, मंगल मतलब मंगल करने वाले हैं। उनका जो आविर्भाव हुआ है वो सबके लिए मंगलकारी है, सबके लिए मंगलकारी है। तो यहां बता रहे हैं कि अद्वैत आचार्य वास्तव में क्या करते हैं, दृष्टिपात करते हैं। किसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, 24 तत्वों के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। उपनिषदों में जैसे लिखा स ऐक्षता स सृजाता महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं, तो यहां पर भी ये बता रहे हैं कि अद्वैत क्या करते हैं, दृष्टिपात करते हैं। तो सृष्टि के मूल कारण कौन है, अद्वैत है, यानी कि असंख्य ब्रह्मांडों के, लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों के, कोटि ब्रह्मांडों के वो क्या है, स्रोत हैं, और अपने विस्तार गर्भोदक्षाय विष्णु से वो प्रत्येक ब्रह्मांड का लालन पालन करते हैं। तो इन सब बातों को समझना पड़ेगा। अद्वैताचार्य के बारे में जब सुनते हैं, लीलाओं के बारे में सुनते हैं, वास्तव में देखा जाए चैतन्य भागवत हम पढ़ते हैं तो वहां पर तो अधिकांश कथा और लीला सुनने को मिलता है, लेकिन चैतन्य चरितामृत जब पढ़ते हैं तो इसमें आपको सिद्धांत और दर्शन सुनने को भी मिलता है। तो प्रारंभिक जो 13 अध्याय है इसको पढ़ने में थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा, ये भक्त लोग कई बार उत्सुक हो जाते हैं कि चैतन्य चरितामृत पढ़ने वाले हैं अब हम गौर लीला पढ़ लेंगे, लेकिन वो देखते हैं कि इसमें तो वही दर्शन की चर्चा हो रही है जो शायद वो पहले भागवतों में पढ़ चुके हैं। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हम जैसे बद्ध जीव जो हैं अद्वैताचार्य को, नित्यानंद प्रभु को, गदाधर पंडित को, श्रीवास पंडित को और स्वयं चैतन्य महाप्रभु को साधारण जीवना ले लें, हम इनके तत्वों को अच्छी तरह से समझें ये हैं कौन, इसलिए ऐसा बता रहे हैं कि अद्वैत आचार्य लाखों करोड़ों कोटि ब्रह्मांडों के क्या है, करता है, सृष्टि करता है, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए हमारे। ये श्रद्धा जब जागृत हो जाएगी अद्वैत आचार्य, इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। आचार्य जो क्या करते हैं, संबंध ज्ञान स्थापित करते हैं। सबसे पहले संबंध, बिना संबंध ज्ञान के सेवा प्रारंभ नहीं होती। जैसे प्रारंभ में हम जोर देते हैं कि भगवद गीता का अध्ययन किया जाए, तो भगवद गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें संबंध ज्ञान दे रहे हैं, सृष्टि के बारे में, अपने बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में, जीव का, प्रकृति का भगवान से क्या संबंध है, ये सब जानना बहुत अति आवश्यक है। इस संबंध ज्ञान की स्थापना के बाद कोई साधक सेवा शुरू कर सकता है। हालांकि भक्ति ज्ञान के ऊपर आधारित नहीं है, ज्ञान के ऊपर निर्भर नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि भक्त जो बन जाते हैं वो भावुक होते हैं। वो स्पष्ट रूप से जानते हैं इन तत्वों को, अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये तत्वों को जानना बहुत जरूरी है। ऐसा संबंध ज्ञान स्थापित होने पर हम जो सेवा करते हैं उसका हमें लक्ष्य प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। किसकी सेवा कर रहे हैं, कौन है व्यक्ति, वो उसकी क्या महिमा है, उसकी भगवत्ता क्या है, उसकी महानता क्या है, ये सब जानते हुए जब हम उसकी सेवा करते हैं तो ऐसा सेवा का फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसलिए प्रारंभ में मर्यादा और वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना होता है और इस स्तर में संबंध ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। बिना संबंध ज्ञान स्थापित हुए हम वैदिक भक्ति भी नहीं कर सकते, वैदिक भक्ति प्रारंभ नहीं होती है, संबंध ज्ञान स्थापित होना आवश्यक है और यही सब संबंध ज्ञान है। इसलिए पहले जो 13 अध्याय देखेंगे, लगभग 13 अध्याय चैतन्य चरितामृत में ये संबंध ज्ञान की स्थापना कर रहे हैं कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। हालांकि श्रीमद् भागवतम का जो निष्कर्ष है वो तो दे रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये पहले से ही बता दे रहे हैं। चैतन्य चरितामृत में ज्यादा उलझन में नहीं डाला, शुरू के अध्याय में बता दिया, एकल ईश्वर कृष्ण आरस सब भृत्य, सीधा। लेकिन फिर भी कोई अगर पाठक है, पहली बार पढ़ता है, प्रारंभ में चैतन्य चरितामृत खोलेगा तो वो बड़ी सावधानी से इन पार्षदों को और महाप्रभु को और साथ में अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को बड़ी गंभीरता से ले, इस कारण से वो इन सब तत्वों का विवेचन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो ये बता रहे हैं कि जब महाप्रभु का प्रकट्य हुआ, निमाय जब प्रकट हुए तो अद्वैत आचार्य ने काफी धन दिया, काफी आभूषण दिए, यानी कि इससे पता चलता है कि अद्वैत आचार्य ब्राह्मण समाज में नेता तो थे शांतिपुर में, साथ में काफी धनी व्यक्ति भी थे। हालांकि सामान्यतया ब्राह्मण जो है वो धनी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अद्वैत आचार्य धनी थे। तो एक बार की घटना बता रहे हैं कि एक समय ऐसा भी हुआ कि अद्वैत आचार्य कर्जे में थे, तो कमलाकांत विश्वास ने, एक भक्त कमलाकांत विश्वास, उन्होंने महाराज प्रताप रूप से 300 रुपये मांगे थे अद्वैत आचार्य का कर्जा चुकाने के लिए। तो कहने का अर्थ ये कि हालांकि वो 300 रुपये का कर्जा था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतने आभूषण दिए बच्चे के लिए, निमाय के लिए। हाँ, और उस समय जो इस कागज के नोट की जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा थी, है कि नहीं, उस समय आप बहुत कम पैसे में बहुत कुछ सामान मिल जाता था। आज के समय में जैसे 100 रुपया कुछ भी नहीं, लेकिन आज से 10 साल पहले 100 रुपये की बहुत कीमत थी, नहीं? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 300 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे उस जमाने में। अभी ऐसा लगता है कि 300 रुपये कौन सा कर्जा है आपको, लेकिन उस जमाने में 300 रुपये की बहुत कीमत होती थी, हजारों गुना ज़्यादा होती थी अभी से ज़्यादा। अभी तो है कि 300 रुपये कर्जा है तो कोई सोचेगा क्या कर्जा है, तो मैं कैसे भी चुका दूंगा, नहीं? अभी तो कर्जा होता है लाखों और करोड़ों में, उसको कहते हैं कर्जा। यानी कहने का मतलब है कि ये प्रभुपाद 74-75 में लिख रहे हैं, ये जो तात्पर्य दे रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि उस समय का जो 300 रुपये है आज का 30,000 रुपया है, 74 की बात कर रहे हैं। और अभी कितना होगा फिर, हाँ अभी कितना होगा, 3 लाख। उस समय का 300 रुपया आज का 3 लाख रुपया है, अगर इस हिसाब से देखा जाए 3 लाख रुपये, बाप है। सही वेश कैले वे वृंदावन गिया, कृष्ण निशे वन खोरी निवृत बसिया। संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया कि वो वृंदावन जाए और वहां जाकर वहां एकांत में कृष्ण की सेवा करें, मुकुंद की सेवा करें। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की ओर जा रहे थे, केवल ये सोचकर ही वो भाववेश में आ गए कि वृंदावन की ओर जा रहे हैं, और इसलिए वो नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे थे कि किस दिशा में वो जाएं, और ये नहीं जान पा रहे थे कि दिन है या रात है। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की ओर जाने लगे थे तो नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद प्रभु उनके पीछे पीछे चले, और जितने महापुरुष जब राड़ा देश से गुजरे तो उनको भावावेश में देखकर सभी भक्त लोग क्या बोले, हरी हरी, ऐसे कहने पर ही सभी प्रकार के क्लेश दूर हो गए। तो वहां पर कुछ वहां पे ग्वाले भी थे तो उन सबको बताया, नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया कि चैतन्य महाप्रभु अगर वृंदावन का रास्ता पूछें तो उनको गंगा जी के तरफ मार्गदर्शन करना, अगर वृंदावन का रास्ता पूछे तो गंगा जी की ओर ले जाना। आगे बताएंगे इसका कारण क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब पूछा वृंदावन का रास्ता तो लड़कों ने गंगा जी के किनारे तक पहुंचाया, गंगा जी का गंगा जी की तरफ जो रास्ता है वो रास्ता भी दिखाया और महाप्रभु उसी तरह भावावेश में आगे चलते रहे। और जैसे महाप्रभु गंगा जी के तट पर चल रहे थे, नित्यानंद प्रभु ने आचार्य रत्न यानी चंद्रशेखर आचार्य को तुरंत ही जाने को कहा, कहा जाने को कहा, अद्वैत आचार्य के घर जाने को कहा। नित्यानंद प्रभु को बोले कि मैं चैतन्य महाप्रभु को गंगा जी के तट से शांतिपुर ले जाऊंगा और अद्वैत आचार्य वहां बड़े सावधानी से नाव लेकर वो खड़े रहे गंगा जी के तट पर, तैयार खड़े रहे। वो तो जाना चाहते हैं वृंदावन लेकिन मैं उनको ले जाऊंगा शांतिपुर। तो नित्यानंद प्रभु वहां पर आगे चल दिए और आगे कहे कि मैं अद्वैत आचार्य के घर जाऊंगा और आप नवदीप जाना और शची माता के साथ वापस लौट जाना अन्य भक्तों के साथ। तो आचार्य रत्न को अद्वैत आचार्य के घर भेज के नित्यानंद प्रभु फिर से चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्होंने बताया उनके आने के बारे में। चैतन्य महाप्रभु भाववेश में थे, उन्होंने पूछा नित्यानंद प्रभु से कि कहाँ जा रहे हो, तो नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया कि हम वृंदावन की ओर जा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब नित्यानंद प्रभु से पूछा कि वृंदावन कितनी दूरी पे है तो नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, देखो ये तो है यमुना, पास में तो आ गए हम लोग। तो ये कहकर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को गंगा जी के तट पर ले गए और महाप्रभु भावावेश में आ गए, गंगा जी को यमुना जी समझकर वो उन्मत्त हो गए, एकदम भावावेश में आ गए। तो महाप्रभु कहते हैं, ओ भाग्य, आज मैंने यमुना जी का दर्शन किया है। गंगा जी को यमुना जी मानते हुए चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करने लगे, इतो बोली यमुनार कोरेन स्तमन, यमुना जी समझकर यमुना जी का स्मरण करने लगे। तो चैतन्य चंद्रोदय नाटक में ये श्लोक को लिखा गया बाद में कवि कर्णापुर के द्वारा, जो महाप्रभु ने श्लोक का उच्चारण किया है वहां पर, जो श्लोक का उच्चारण किया गंगा जी को यमुना जी समझते हुए, चिदानंद भानो सदानंद सूनो परा प्रेम पात्री ध्रव ब्रह्म गात्री अघानम लवित्र जगत क्षेम धात्री पवित्र क्रिया नो वपुर मित्र पुत्री। हे हमना, आप तो चिन्मय है, चिन्मय आपका जल क्या है, चिन्मय जल है, और आप नंद महाराज के पुत्र को प्रेम देती हैं, आप वही जल हैं जो आध्यात्मिक जगत में है, वही जल है, आप सभी प्रकार के अपराधों से छुटकारा दिलाती हैं, सभी प्रकार के पापों से छुटकारा दिलाते हैं और आप जगत का मंगल करने वाले हैं। और फिर बोलते हैं आप सूर्य की पुत्री हैं और आप हमें भी पवित्र करें। और इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए चैतन्य महापुरुष ने गंगा जी को प्रणाम किया, गंगा जी में स्नान किया और उस समय उनके पास केवल एक ही वस्त्र था, अन्य वस्त्र नहीं था। तो चैतन्य महापुरुष जब खड़े रहे थे दूसरे वस्त्र के लिए कि उनको कोई दूसरा वस्त्र देगा, तो अद्वैत आचार्य उसी समय वहां नाव में आकर पहुंच गए और वो नए वस्त्र लेकर आए। उनके लिए कोपिन बहिर्वास लाए, आयला नूतन कोपिन बहिर्वास लाया। और जब अद्वैत आचार्य वहां पहुंचे तो वो महाप्रभु के समक्ष खड़े हुए और उनको प्रणाम किए और देखने के बाद महाप्रभु देखने लगे, क्या है यहाँ पर, ये कैसी स्थिति है, अद्भुत दृश्य है। तो महाप्रभु चकित हो गए देख करूं। अभी भी भावावेश में थे तो महाभ्रताचार्य से कहते हैं, आप यहां कैसे आ गए, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वृंदावन, आपको कैसे पता चला कि मैं वृंदावन में हूं। तो महाप्रभु अद्वैत आचार्य से पूछ रहे हैं, कहां पूछ रहे हैं, शांतिपुर में पूछ रहे हैं। अद्वैत आचार्य ने सारी बात बता दी। चैतन्य महाप्रभु को कहा, जहां आप हैं वही वृंदावन है, तुम्ही जहां सही वृंदावन, और मेरा भाग्य क्या है, मोर भाग्य गंगा तीरे तुम्हार आगमन, और मेरा भाग यह है कि गंगा जी के तीर में आप मुझे यहां मिले हैं गंगा जी के तट पर, और जहां आप हैं वही वृंदावन है। तो दोनों बातें सच हो गई। महाप्रभु ने कहा, नित्यानंदपुर ने मुझे धोखा दिया है, मुझे गंगा जी के तट पर ले आया ये कहते हुए कि यमुना जी हैं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को डांट रहे थे, उनको ये कह रहे थे कि उन्होंने धोखा दिया है। अद्वैत आचार्य ने कहा, जो भी नित्यानंद प्रभु ने आपको बताया है वो असत्य नहीं है। अभी तो आपने यमुना जी में तो स्नान किया है, और उन्हें बताया, वर्णन किया कि गंगा जी और यमुना जी यहां पर साथ ही बहती हैं, पश्चिम दिशा में यमुना जी हैं और पूर्वी दिशा में गंगा जी हैं। तो यहां बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु पश्चिम दिशा में स्नान किए थे, प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, और वास्तव में उन्होंने यमुना जी में स्नान किया था। तो नित्यानंद प्रभु ने झूठ नहीं कहा, अद्वैत आचार्य ने झूठ नहीं कहा। बाद में हम देखते हैं कि गंगा जमुना जो है उनका संगम होता है प्रयाग में, सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती, और यमुना जी पश्चिम दिशा में बहती हैं, गंगा जी पूर्वी दिशा में बहती हैं, और बाद में आगे चलकर संगम होता है उनका। और महाप्रभु पश्चिम दिशा में जो यमुना जी बहती हैं उसमें स्नान किए थे। फिर अद्वैत आचार्य ने सुझाव दिया चैतन्य महाप्रभु को कि क्योंकि आपने अभी स्नान कर लिया यमुना जी में और उनके वस्त्र भी भीगे हुए हैं, तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप वस्त्र बदल लें और सूखे जो वस्त्र हैं उनको पहन लें। अद्वैत आचार्य ने कहा कि तीन तीन लगातार आप उपवास कर रहे हैं, भावावेश में रहे आप, कृष्ण प्रेम में रहे, कृष्ण प्रेम के कारण आप भावावेश में रहे, इस कारण से आपने कुछ लिया नहीं, तो मैं आप दोनों को निमंत्रण देता हूं, कृपा करके आप मेरे घर में आए और प्रसाद ग्रहण करें। अद्वैत प्रभु ने कहा, मेरे घर में मैंने केवल चावल ही बनाया है, तरकारी भी बहुत सरल है, कोई विशेष अलग से भोजन तो है नहीं, थोड़ी तरकारी है और शाक है, सूप है और शाक है, अंग्रेजी इसमें भी सूप ही बोलते, लिक्विड वेजिटेबल्स। तो यहां पर भी जो शब्द का उपयोग किया है सूप किया गया, तो इसी से शायद अंग्रेजी में लिया है सूप, इसमें एस ओ यू पी होता है सूप, इसमें एस यू पी ए है सूप, सूप और शाक। तो ये सब बनाया गया है आप दोनों के लिए। अद्वैताचार्य महाप्रभु को नाव में लेकर गए, घर लेके गए अपने। अद्वैताचार्य ने उनके चरण धोए, और ये सारे व्यंजन जो है अद्वैताचार्य की पत्नी सीता ठकुरानी ने बनाया था, और स्वयं अद्वैताचार्य ने भगवान विष्णु को भोग लगाया, और ये मंजनों को तीन भागों में बांटा गया। एक भाग कृष्ण के लिए था, कृष्ण को भोग लगाने के लिए था, और जो कृष्ण को भोग लगाने के लिए था वो तो थाली में रखा गया, और बाकी जो और दो बनाए गए थे वो पत्तल में रखे गए, केले के पत्ते में, और दो थाली में, दो जो पत्तल के जो थालियां थी उसमें नाना प्रकार के व्यंजन रखे गए थे, जिसका वर्णन मिलता है यहाँ पर। और बीच में बता रहे हैं कि मक्खन रखा गया था, चावल रखा गया था, नाना प्रकार की तरकारी रखी गई थी, मूंग दाल रखा गया था, और साथ में क्या रखा गया था, शाक रखा गया था, सलाद रखा हुआ था, अदरक भी था, नाना प्रकार के शाक थे, और कुष्मंडा, स्क्वैश, स्क्वैश क्या कहते हैं, कुष्मंडा का मतलब क्या होता है, नाना प्रकार की सब्जियां थी, कहने का आती है मान कचू, पटोल, ये सब बंगाली व्यंजन है, बंगाल में सब व्यंजन प्राप्त होते हैं। आप मायापुर जाएं, बंगाल में जाएं, तो ये सब व्यंजन वहां बनते हैं। शुक्ता, शुक्ता थोड़ा कड़वा होता है, और नींबू, थोड़ा कड़वा नींबू, ये सब तरकारियों के साथ मिले हुए थे। और पांच प्रकार के कड़वे शुक्ता थे, झाले, झाले, झाले का मतलब क्या होता है, हाँ? मिर्ची वाला, अच्छा, झाले, अच्छा। और साथ में यहां बता रहे हैं कि नींब वृक्ष से बने हुए थे, जो सब्जियां बनी हुई थी, बैंगन के साथ बनाया गया था, पटोल नाम का फल फूलबाड़ी के साथ पकाया गया था, दाल भी बनाया गया था, और एक व्यंजन बनाया गया था जिसका नाम है कुष्मांड मनचाकी, मनचाकी। प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में, वी रिक्वेस्ट आवर एडिटर्स ऑफ कुक बुक्स टू एड ऑल दिस नाइस प्रिपरेशन डिस्क्राइब्ड बाय द एक्सपीरियंस ऑथर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। प्रभुपाद कह रहे हैं जो कुक बुक है हमारा बनाया जाएगा, जो छापा जा रहा है, उसमें ये इस प्रकार के व्यंजनों का वर्णन किया जाए, ये सब व्यंजन कैसे बनाए, आज के समय में अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो वर्णन किया है उसको हम लिख लें कि आप सबको भी बनाना है अपने अपने घर में। सब महाप्रभु को प्रिय है शाक, महाप्रभु को शाक बहुत प्रिय है, और नारियल से बना हुआ, नारियल और दही के साथ, नारियल और दही मिला के, और साथ में रॉक कैंडी को क्या कहते हैं, मिश्री, मिश्री, मिश्री के साथ मिलाया गया था, और साथ में केले के जो फूल हैं उससे सब्जी बनाई गई, दुग्ध कुष्मांड यानी कि दूध में उबाला गया कुष्मांड, बड़ी मात्रा में बनाया गया, कितने सारे व्यंजन बनाए गए, वो तो कह रहे थे कि ये चावल है, और छोटे छोटे केक भी थे, मीठे और खट्टे, चटनी भी थी, पांच छह प्रकार के खट्टे व्यंजन थे, और ये नाना प्रकार की तो तरकारी थी, इस तरह से बनाए गए ताकि जो लोग वहां पर हैं वो सब प्रसाद को ग्रहण कर सकें। और क्या क्या बनाया गया, बहुत सारे केक बनाए गए, मूंग दाल केक, सॉफ्ट केक्स बनाए गए, और साथ में कच्चे केले के साथ, केक के साथ उड़द दाल के साथ भी केक बनाया गया, और कई प्रकार की मिष्टी थी, खीर भी था, खीर पुली, और नारिकेल, नारिकेल नारियल के द्वारा बनाया गया था, और हर प्रकार का केक बनाया गया, पिठा, पिठा कहते हैं केक को, पिठा कहते हैं बंगाली में, पिठा, पिठा कर लेना, ये सब आज के लोगों ने तो व्रत रखा है, तो नाना प्रकार की तरकारी जो है अलग अलग घड़ों में लेके आए थे, पॉट्स में लेके आए थे, और केले के पत्ते में लेके आए थे, बता रहे कम से कम 32 ऐसे जो है केले के पत्ते थे, 32 प्रकार के ऐसे रखे हुए थे केले के पत्ते, और तीन स्थान थे जैसे हमने बताया खाने के स्थान थे, जिसमें सैकड़ों वहां पर, वहां पे डोंगा रखा हुआ था, डोंगा कहते हैं, डोंगा एक घड़ा होता है जो छोटा सा, उसको डोंगा कहते हैं, उसमें नाना प्रकार की तरकारी थी, कैसरोल आप अंग्रेजी में बोलते हैं, नाना प्रकार की तरकारी थी, खीर भी था घी के साथ मिश्रण, घी मिला हुआ था उसमें, और नए नए घड़े थे, मिट्टी के घड़े थे, और मिट्टी के घड़े में दूध रखा हुआ था गरम गरम इन तीन सालों में, और इसके अलावा क्या था, दुग्ध चीड़ा, जैसे दही चीड़ा होता ना वैसे दुग्ध चीड़ा, केले के साथ मिलाया हुआ, दूध के साथ मिलाया हुआ, और कुष्मांड के साथ मिलाया हुआ, स्क्वैश। यहां बोल रहे हैं कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि वास्तव में संभव नहीं है सब प्रकार के व्यंजनों का वर्णन करना यहां पर, इतने सारे व्यंजन बनाए थे, और दो स्थानों में मिट्टी के डोंगे रखे गए, अलग प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे, दही से, संदेश से और केले से। मैं सबका वर्णन नहीं कर सकता, मैं सबका वर्णन नहीं कर पाऊंगा। बता रहे हैं यहां पर, और क्या बता रहे हैं, और जो उबला हुआ चावल था और साथ में तरकारी थी और उसमें तुलसी के दल थे और साथ में गुलाब का जल भी डाला गया था उसमें इन घड़ों में। तीन स्थान थे बैठने के जहां पर कपड़े रखे गए थे, पहले भगवान कृष्ण को भोग लगना था और बड़े प्रेम से कृष्ण ने इस भोग को स्वीकार किया। आगे क्या हुआ देखिए, भोग आरती हुई, भोग लगाने के बाद भक्तिवन ठाकुर का भजन सुना ना, भोग आरती, तो उसमें सब इन व्यंजनों का वर्णन करते हैं भक्तिवन ठाकुर, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, लुच्ची चीनी सरपूरी लड्डू रसा बोली, है ना, वो भजन गाते ही सब व्यंजनों का स्मरण होता है, कृष्ण का स्मरण तो बाद में होता है। तो भक्तिवन ठाकुर ने इतने भक्तिवन ठाकुर इतने दक्ष थे कि हमें व्यंजनों के माध्यम से कृष्ण का स्मरण करा रहे हैं, है ना, क्योंकि लोगों की रुचि है खाने में, खाने पीने में, तो नाना प्रकार के व्यंजनों का वर्णन करेंगे तो सब लोग इस भजन को गाएंगे, और जब भजन को गाएंगे तो फिर कृष्ण का स्मरण भी कराएंगे वो। तो अद्वैत आचार्य ने इसके बाद फिर जब आरती हो गई, उन दो भाइयों को कहा, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहा कि आइए आइए आरती में भाग लीजिए, तो दोनों प्रभु वहां पर पहुंचे और आरती दर्शन किया। आरती जब हो गई मंदिर में और ठाकुर जी को विश्राम दिलाया गया, अद्वैत आचार्य आए महाप्रभु के पास, महाप्रभु से कुछ कहने के लिए, उन्होंने कहा कि आप कृपा करके आए और प्रसाद ग्रहण करें। चेतने महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रसाद ग्रहण करने लगे और उन्होंने मुकुंद और हरिदास को भी बुलाया, लेकिन मुकुंद और हरिदास वहां पर हाथ जोड़े खड़े थे। उन्होंने क्या कहा, मुकुंद को जब बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे अभी कुछ कार्य करना बाकी है, मैं बाद में प्रसाद ग्रहण करूंगा, आप दोनों प्रभु कृपा करके प्रसाद ग्रहण करें, कक्ष में चलें। हरिदास ठाकुर ने कहा, जैसे कि वो हमेशा अपने आप को अधम मानते हैं, मुई पापिष्ट अधम, मैं तो बहुत पापी हूं और सबसे अधम हूं, मैं बाद में थोड़ा सा प्रसाद ले लूंगा हाथ में, बाहर खड़े होकर। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को लेकर कमरे में गए और महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने वो सारी व्यवस्था देखी। चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से बड़े प्रसन्न हुए व्यवस्था देखकर। चैतन्य महाप्रभु ने जो नाना प्रकार के व्यंजन बनाए थे उसको स्वीकार किया। उन्होंने कहा, उन्हें क्या बोला जानते हैं, उन्होंने कहा कि जो इस तरह से कृष्ण को भोग लगा सकता है, मैं सच बताऊं आपको, मैं तो उसके चरणों को अपने शीश में धारण करना चाहता हूं जन्म जन्मांतर तक। तो इसलिए हम जब नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर राधा पार सारथी को या ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, गुरु परंपरा प्रसन्न होती है, अपनी क्षमता के आधार अनुसार हमें भोग लगाना चाहिए। अगर क्षमता हमारी 56 भोग की है तो केवल हम जल ही क्यों भोग लगाएं, तो अपनी क्षमता के अनुसार भोग लगाना चाहिए। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि ऐसे भक्त के जो चरण है मैं अपने शीश में धारण करना चाहता हूं जन्म जन्मांतर तक, जो इस तरह भोग लगाते हैं। महाप्रभु कमरे में गए और देखा कि भोजन को तीन भागों में बांटा गया है, तीन स्थानों में बांटा गया है, और उनको ऐसा लगा ये सब कृष्ण के लिए है। लेकिन वो अद्वैत आचार्य के मनोभाव को नहीं समझ पाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा चलिए हम सब इन तीन स्थानों में बैठते हैं और हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। अद्वैत आचार्य ने कहा नहीं, मैं प्रसाद वितरण करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि सारे जो तीन ये स्थानों में प्रसाद रखे गए हैं ये सभी वितरण के लिए हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमें दो पत्तल और दे दें, हम थोड़ा सा थोड़ी सी तरकारी और चावल ले लेंगे। तो आचार्य ने क्या कहा, आप दोनों यहां बैठे हैं। उनका हाथ पकड़कर उन्होंने अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को उन दो स्थानों में बिठाया प्रसाद ग्रहण करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सन्यासी के लिए इतना सारा व्यंजन ग्रहण करना अच्छा नहीं है, अपनी इंद्रियों का दमन नहीं कर सकता हो अगर इतना खाएगा तो, बहुत जरूरी है, हम सबको ध्यान रखना चाहिए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकम पुरुषम पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बोधिर्यस्तम अहम प्रपद्ये। तो ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। नाना प्रकार के व्यंजन बनते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, लेकिन स्वयं भक्त जो है सरल प्रसाद ग्रहण करना चाहता है। तो महापुरुष स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि कृपा करके आप अपने आप को व्यक्त करें और आप छुपाएं नहीं अपने आप को, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं और आपके सन्यास आश्रम में प्रवेश करने का गुह्यतम रहस्य क्या है ये भी मैं जानता हूं, तो अपने आप को छुपाने का प्रयास ना करें। अद्वैत आचार्य ने महापुरुष से प्रार्थना की कि आप प्रसाद ग्रहण करें और तर्क छोड़ दें। महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मैं इतना ग्रहण नहीं कर सकता हूं प्रसाद। तो अद्वैत आचार्य ने फिर से प्रार्थना की कृपा करके आप प्रसाद ग्रहण करें, और अगर आप नहीं ग्रहण कर सकते हैं सबको तो बाकी छोड़ दीजिएगा। तो कई बार गृहस्थ भक्त लोग ज्यादा बनाते हैं इस कारण से कि वैष्णव लोग प्रसाद लेके छोड़ दें ताकि उनको उचित महाप्रसाद मिल सके, महा महाप्रसाद का उनको लाभ मिले गृहस्थ भक्तों को। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं इतना नहीं खा सकता, और सन्यासी के लिए ठीक नहीं है कि वो उचित छोड़े। अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि आप तो जगन्नाथपुरी में कितना प्रसाद ग्रहण करते हैं ये मैं भी जानता हूं। चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ दोनों एक ही तो हैं। अद्वैत आचार्य ने संकेत किया कि जगन्नाथपुरी में महाप्रभु तो 54 बार खाते हैं दिन में, और सैकड़ों घड़े से ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, वहां कैसे ग्रहण करते हैं फिर, और यहां पर सन्यास आश्रम का ढोंग दिखा रहे हैं। अद्वैत आचार्य ने कहा आपके लिए तो कुछ भी नहीं, ये तो एक ग्रास है केवल आपके लिए, ये जो भोजन रखा है वो तो केवल एक ग्रास है आपके लिए, और ये तो जितने यहां व्यंजन रखे गए हैं और ये तो 5 ग्रास के बराबर भी नहीं है आपके लिए। अद्वैत आचार्य ने आगे कहा मेरा सौभाग्य कि आप मेरे घर आए हैं, कृपा करके आप चातुरी ना दिखाएं, वाक जाल में ना मुझे फंसाएं, कृपा करके प्रसाद ग्रहण करें और बातें ना करें, करो भोजन, छाड़ा छातुरी प्रभु करो भोजन। अद्वैत आचार्य ने फिर जल दिया उनको ताकि वो अपने हाथ धो सकें, और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बैठे मुस्कुराते हुए प्रसाद ग्रहण किया। नित्यानंद प्रभु बोले 3 दिन से मैं उपवास कर रहा हूं और आशा है कि मैं आप उपवास पारण करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि इतना सारा व्यंजन है, बहुत ज्यादा व्यंजन है, महाप्रभु का ही विचार था लेकिन नित्यानंद प्रभु का विचार बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कहा तो ये ग्रास के बराबर भी नहीं है, 3 दिन से मैं उपवास रख रहा हूं, और उन्होंने ये सोचा कि मैं आज मैं पारण करूंगा, हालांकि मुझे अद्वैत आचार्य के द्वारा निमंत्रण मिला है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज भी उपवास है। ये तो मेरा आधा पेट भी नहीं भरेगा ये भोजन, तो इससे क्या होगा? अब देखिए क्या होता है, आचार्य क्या कहते हैं, अद्वैत आचार्य कहते हैं, प्रभु आप तो सन्यासी हैं और अधिकांश तीर्थाटन में रहते हैं, आप कभी फल खाते हैं, कभी कंद मूल खाते हैं, फल मूल खाते हैं, और कभी आप उपवास करते हैं। मैं गरीब ब्राह्मण हूं, आप मेरे घर आए हैं, थोड़ा सा भोजन जो मिला है उससे तृप्त हूं आप, और ये लोभ त्यागें, आप लालच को त्यागें। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं जो भी हो, आपने मुझे निमंत्रित किया है, मुझे बुलाया है, निमंत्रण आपने दिया है, तो आपको देना पड़ेगा जो भी मैं मांगता हूं। अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु के इस कथन को सुनकर मजाक करने लगे और बोले, क्या बोलते हैं अद्वैताचार्य, कहते हैं आप तो भ्रष्ट अवधूत हो, संन्यास ग्रहण कर लिया है आपने अपने उदर भाजन के लिए, और आपका केवल एक ही व्यापार है ब्राह्मणों को तंग करना। अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को इस प्रकार कहते हैं, क्या कहते हैं कि आप तो 10-20 मान चावल खा सकते हैं, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, मैं इतना चावल कहां से लाऊंगा? एक मान मतलब 40 किलो होता है, एक मान कितना होता है, 40 किलो होता है, तो आप तो 10-20 चावल, 10-20 मान आप चावल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इतना चावल कहां से लाऊंगा मैं, है ना? अद्वैताचार्य कह रहे हैं जो भी आपके पास है कृपा करके आप इसको ग्रहण करें और उठें, अपना पागलपना दिखाएं और इधर उधर ना फेंकें प्रसाद को। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु प्रसाद ग्रहण किए, अद्वैताचार्य के साथ थोड़ा मजाक किए, और आदि तरकारी ग्रहण करने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद चैतन्य महापुरुष ने वहां प्रसाद लेना छोड़ा और फिर दूसरे व्यंजन की तरफ गए। इस तरह से जब इस घड़े में सब्जी रखी थी वो जब समाप्त हो गई, आदि समाप्त हो गई, अद्वैत आचार्य उसको फिर से भरने लगे, तो इस तरह से महापुरुष ने फिर से उसको समाप्त किया, फिर अद्वैत आचार्य फिर से भरने लगे, वो फिर से प्रसाद लेने लगे, है ना? तो लीला है, भोजन लीला, चेतन चरतामृत में यही लीला है, संकीर्तन लीला, भोजन लीला, प्रसाद की लीला या नृत्य करने की लीला, भक्तों का संग, जगन्नाथ रथ यात्रा, यही है चेतन चरतामृत। और घड़ों को दोबारा सब्जी से भरकर अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना की आप और ग्रहण करें। महाप्रभु ने कहा और मैं कितना ग्रहण कर सकता हूं, और कितना खाऊंगा मैं? अद्वैत आचार्य ने कहा कृपा करके आप ना छोड़ें जो मैंने आपको दिया है, आप ग्रहण करें, आप आना छोड़ दें भले, लेकिन आपको ग्रहण तो करना पड़ेगा। इस तरह बार बार प्रार्थना करते अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य की सारी इच्छाओं को पूरा किया। नित्यानंद प्रभु मुस्कुराते हुए मजाक करने लगे, मेरा पेट तो अभी भरा नहीं, अपना भोजन ले जाओ, अभी तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, लोहिया जा तोर अन्न किचू ना खाइला। ये कहकर नित्यानंद प्रभु हाथ में चावल लिए और उसको जमीन पर फेंका, ये दिखाने के लिए कि बड़े क्रोधित हैं। हुआ क्या फिर, जब दो और चार चावल के कुछ चावल, दो या चार चावल के जो अन्न हैं थोड़े बहुत रह गए थे, वो अद्वैत आचार्य के शरीर में जा लगे। चावल जब उन्होंने फेंका तो कुछ उसमें से भाग जो है अद्वैत आचार्य के शरीर में जाके लगा, और जैसे ही अद्वैत आचार्य के शरीर में लगा वो भाववेश में आकर नृत्य करने लगे। ये पहली बार था कि अद्वैत आचार्य इस तरह से नृत्य कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने चावल फेंका अद्वैत आचार्य के ऊपर, अद्वैत आचार्य को ऐसा लगा कि वो पवित्र हुए हैं, नित्यानंद प्रभु का महाप्रसाद उनके शरीर में लगा है, वो नृत्य करने लगे। जैसे कि हम सुनते हैं, क्या सुनते हैं, भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही तीन महाबल। तो ये तीन महाबल हैं, शुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट महाप्रसाद ग्रहण करना, उनकी चरण धूली और उनके चरणों का जल, चरणामृत जिसको कहते हैं, इसको ग्रहण करने से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। ये हमारे लिए टॉनिक है। कभी कभी हम आध्यात्मिक जीवन में भक्ति मार्ग में कमजोरी महसूस करते हैं, तो इन सब को ग्रहण करने से हमें पुनः शक्ति प्राप्त होगी। तो अद्वैत आचार्य फिर से मजाक करते हैं, कहते हैं, नित्यानंद प्रभु, मैंने आपको निमंत्रण दिया और मुझे तो उसका फल प्राप्त हो गया, आपका तो कोई जाति कुल है नहीं, स्वभाव से आप पागल हो और मुझे भी आपने पागल बना दिया है, मेरे ऊपर ये उच्चिष्ट फेंक कर, और ये भी नहीं सोचा, आपको ये भी भय नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे ऊपर झूठा फेंक रहे हो। नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, ये उच्चिष्ट कृष्ण का है, अगर तुम उसको साधारण रूप में लोगे, साधारण भोजन के रूप में लोगे, तो तुम अपराध कर रहे हो। नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, तो इसका अब तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा, 100 सन्यासियों को जो अपने घर पे बुलाओगे और उनको प्रसाद खिलाओगे, तब जाके तुम्हारा यह अपराध क्षमा होगा। कम से कम 100 सन्यासियों को बुला के खिलाना पड़ेगा अब तुम्हें, तुमने ऐसे दोष दिया मुझे, अब 100 सन्यासियों को खिलाओ। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, आज के बाद मैं कभी किसी सन्यासी को नहीं बुलाऊंगा, ये सन्यासी ने मेरे जो ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट कर दिया है। और उसके बाद अद्वैत आचार्य ने उनके हाथ मुंह धुलाए और उनको एक बहुत ही सुसज्जित शैया के पास ले गए, उनको विश्राम करवाया। और बाद में अद्वैत आचार्य ने माल्यार्पण किया और साथ में तुलसी मंजनिया भी साथ मर दी, लवंग दिया, लवंग या बता रहे लवंग इलायची उनको क्या दिया, लवंग इलायची दिया, साथ में तुलसी की मंजरियां भी दी, तुलसी मंजरी के साथ लवंग इलायची और तुलसी मंजरी, बड़ा इससे अच्छा स्वाद मिल रहा था उनको। अद्वैत आचार्य ने उनके शरीर पर चंदन का लेप किया और उनका गंध लिया, सूंघा और उनके गले में माल्यार्पण किया। और महाप्रभु जब नित्यानंद प्रभु शैया में लेटे, अद्वैत आचार्य उनका चरण स्पर्श करना चाहते थे, चरण सेवा करना चाहते थे, पाद संवाहन जिसको कहते हैं, लेकिन महाप्रभु हिचकिचाने लगे और उन्हें अद्वैत आचार्य से कहा। महाप्रभु ने कहा, अद्वैत आचार्य, मुझे तो आपने अलग अलग तरह से नृत्य करा ही दिया, कम से कम अब तो ये अभ्यास छोड़ें, आप मुकुंद के साथ जाएं और हरदास, मुकुंद और हरदास के साथ कृपा करके आप लोग अब प्रसाद ग्रहण करें। अद्वैत आचार्य ने प्रसाद लिया मुकुंद और हरदास के साथ और खूब प्रसाद लिया, प्रसाद ग्रहण किया, भोजन लिया उन्होंने। शांतिपुर के लोगों ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु वहां पर ठहरे हुए हैं, तो वहां सब तुरंत पहुंचे उनको देखने के लिए, उनके चरणों का दर्शन करने के लिए, और सब लोग प्रसन्न होके शांतिपुर के निवासी बाहर खड़े हुए, सब लोग जोर जोर से बोलने लगे, हरी 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 बोले लोग, आनंदित होया, चमत्कार पायले प्रभु, सौंदर्य देखिया, महाप्रभु की सुंदरता देखकर सब हरी हरी बुलाने लगे, बोलने लगे, महाप्रभु के दर्शन किया सब। चैतन्य महाप्रभु को देखा, गौरांग रूप उनका, गौरांग कांति, सूर्य की कांति के समान, और साथ में उन्होंने स्वर्ण रेखे स्वर्ण वेश धारण किए हुए थे और वहां पर लोग आए और आनंदित हुए। और उसके बाद फिर अद्वैत आचार्य ने वहां पर संकीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अद्वैत आचार्य नृत्य किया तो नित्यानंद प्रभु भी नृत्य करना शुरू कर दिए, हरदास ठाकुर भी साथ में नृत्य करना शुरू कर दिए। अद्वैत आचार्य ने कहा, मेरे प्रिय मित्रों, मैं क्या कहूं, आज मुझे तो बहुत आनंद मिल रहा है, कई दिनों के बाद मेरे घर में कृष्ण आए हैं, मेरे घर में कृष्ण है। अद्वैत आचार्य संकीर्तन करने लगे और उन्होंने इस श्लोक का उच्चारण किया, अभी श्लोक का वर्णन कर रहे हैं यहां पर, और उनके शरीर में कंपन होने लगा, उनके बाल खड़े हो गए, आंखों से अश्रु धारा बहने लगे। और अद्वैत आचार्य नृत्य करते हुए कभी घूमते इधर उधर और फिर महाप्रभु का चरण पकड़ लेते। फिर अद्वैत आचार्य बोले, क्या बोले, आप कई दिन तक जो है मुझे बेवकूफ बनाते रहे, गप मारते रहे, अब मैं आपके आप मेरे घर में हैं, मैं आपको बांध दूंगा, जाने नहीं दूंगा। तो ऐसा कहकर अद्वैत आचार्य ने संकीर्तन किया 3 घंटे के लिए, रात्रि को कीर्तन भी किया और नृत्य भी किया। तो अद्वैत आचार्य इस तरह से नृत्य किए, चैतन्य महाप्रभु कब और जब भाव उमड़ने लगा कृष्ण के लिए, विरह के कारण उनका प्रेम बढ़ता गया और भावावेश के कारण चैतन्य महाप्रभु अचानक जमीन पर गिर पड़े, अद्वैत आचार्य नृत्य करना बंद कर दिया। मुकुंद ने जब महाप्रभु का भावावेश देखा तो समझ गए, उनके भाव को समझ गए और वो कई प्रकार की प्रार्थनाएं बोलने लगे। अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को उठाया और उनको नृत्य करने में सहायता की। मुकुंद की प्रार्थना सुनकर लेकिन वो अपने भाववेश को रोक नहीं पा रहे थे, उनकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगे, उनका शरीर फिर से शरीर में कंपन होने लगा, बाल खड़े होने लगे, शरीर से पसीना निकलने लगा और वो ठीक तरह से बोल नहीं पा रहे थे। कभी वो गिरते, कभी उठते, कभी वो रोते। मुकुंद ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, क्या नहीं हुआ है मेरे साथ, ये जो कृष्ण प्रेम का जहर है उसने मेरे मन और शरीर को जहरीला बना दिया है। तो इस तरह से वर्णन किया जा रहा है अद्वैत आचार्य के बारे में। तो ये सब कुछ अद्वैत आचार्य के बारे में चैतन्य चरितामृत से हमने वर्णन किया, आज उनका आविर्भाव है और उनसे हम शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उनसे कृपा की याचना कर सकते हैं कि उनकी कृपा से हम लोगों को नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव से पहले अद्वैत आचार्य का आविर्भाव आता है, तो इसलिए अद्वैत आचार्य की जब कृपा होगी तो नित्यानंद प्रभु की कृपा हमें मिलेगी और फिर महाप्रभु की कृपा मिलेगी, पंचतत्व की कृपा मिलेगी, सबकी कृपा मिलेगी, फिर राधा माधव अष्ट सखी की कृपा मिलेगी। ठीक है, हरे कृष्ण। और कुछ कोई किसी को कुछ कहना है, अगर चैतन्य चरितामृत से था कहने के लिए तो बहुत कुछ है। तो अद्वैत आचार्य को कई बार सदाशिव और महाविष्णु का भी अवतार बताया जाता है, सदाशिव और महाविष्णु का संयोग जो आपस में मिलते हैं तो वो अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं, विष्णु तत्व ही है अद्वैत आचार्य। नहीं, सदाशिव के अवतार भी हैं और महाविष्णु के अवतार भी हैं, दोनों एक साथ मिल जाते हैं। कई बार बोलते हैं ना, कई बार भक्तों के लिए भी कहा जाता है, ये उनके अवतार भी हैं, इनके भी अवतार भी हैं, ऐसे ही बोला जाता है, तो उन्हों का आवेश होता है। लेकिन इस केस में आवेश नहीं कहा जाता, अवतार तो अवतार है ना, महाविष्णु के अवतार हैं और साथ में सदाशिव के भी अवतार, एक साथ है, विष्णु तत्व जीव तत्व नहीं है। और उनको आप हमेशा चित्र में वृद्ध रूप में देखेंगे, उनके केश आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वृद्ध अवस्था में अद्वैत आचार्य का पंचतत्व वगैरह जो स्थापना हुई है वहां पर भी अद्वैत आचार्य का श्रृंगार इसी तरह से होता है। ठीक है क्या? हाँ, इसलिए वो हम तो जो वर्तमान वैष्णव है उन्हीं की मत के अनुसार चल रहे हैं, और अद्वैत आचार्य को दाढ़ी बनाई हुई है ना, श्वेत केश दिखाए गए, तो उसी को हम अपना रहे हैं। ये लीला है ना, गौर लीला है, तो गौर लीला में भगवान भी भक्त के रूप में आते हैं, भक्त अवतार, भक्त अवतार। तो अद्वैत आचार्य भी हालांकि भगवान है लेकिन फिर भी भक्त के रूप में, आचार्य के रूप में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। तो इस कारण से लीला के कारण आचार्य होने के नाते उनका वेश इस प्रकार का है, इस कारण से दिखाया गया है। महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता था, अद्वैत आचार्य उनको बहुत सम्मान देते थे, और इस कारण से अद्वैत आचार्य ने एक बार योग वशिष्ठ और निर्विशेष मायावाद दर्शन का प्रचार शुरू कर दिया था, और जब महाप्रभु को पता चला तो बहुत क्रोधित हुए और एक दिन आके उनको मारना शुरू किया। तो अद्वैत आचार्य बड़े खुश हुए कि आज मेरे ऊपर विशेष कृपा हुई महाप्रभु की, है ना, कि मुझे तो कभी डांटते नहीं। लेकिन महाप्रभु अद्वैत आचार्य को अपने गुरु के रूप में देख रहे थे, क्योंकि वो अद्वैत आचार्य और ईश्वरपुरी दोनों ही श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। इस वजह से महापुरुष हमेशा सम्मान देते थे अद्वैत आचार्य को। तो ये सब जो है लीलाएं हैं, शिक्षाप्रद होती हैं, हमें इन लीलाओं के द्वारा हमें शिक्षा लेनी चाहिए, ये मानव समाज के कल्याण हेतु है। ये लीलाएं प्रकट की जा रही हैं भक्तों के लिए और उन सभी बदजीवात्माओं के लिए जो भवसागर से छुटकारा पाना चाहते हैं, उनको इन लीलाओं से शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया लेकिन आचरण करके दिखाया महाप्रभु ने, महाप्रभु ने भक्ति करके दिखाई, अपनी ही भक्ति करके दिखाई। तो इस तरह से चैतन्य चरितामृत ऐसा एक बहुमूल्य ग्रंथ है जिसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, खासकर जो इस संप्रदाय से जुड़े हैं उनको चैतन्य चरितामृत ग्रंथ निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर आध्यात्मिक जीवन अधूरा रह जाएगा। चैतन्य चरितामृत पूरा पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करके श्रीमद् भागवतम को रोक कर चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया और 1.5 साल में पूरा कर दिया, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे उनके पास समय कम है, इसलिए प्रभुपाद ने बड़ी तेजी से, और उन्होंने कहा कि 2 महीने में छाप के दो मुझे, इस कारण से क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे ये ग्रंथ पूरे विश्व में सबके लिए उपलब्ध हो, अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हो, और एक बार अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होगा तो बाकी भाषाओं में भी उसका अनुवाद हो जाएगा। इस कारण से प्रभुपाद इसके लिए बड़े उत्साहित। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मायापुर में बाढ़ आती है और समय कई चीजें डूब जाती हैं, उसमें कई बार सामान भी डूब जाते हैं, तो ऐसे में वो कहते हैं कि अगर भगवद गीता डूब रही हो तो भगवद गीता को डूबने दें, और फिर अगर श्रीमद् भागवतम डूब रहा हो तो भागवतम को भी डूबने दें, और अगर चैतन्य चरितामृत भी अगर जल के भीतर जा रहा हो तो क्या करें फिर? वो कहते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, फिर चैतन्य चरितामृत ग्रंथ अगर जा रहा है, गंगा जी उसको लेकर जा रही हैं या डूब रहा है, तो स्वयं आप चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को लेकर आप भी डूब जाएं। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत को ना छोड़ें आप, चैतन्य चरितामृत को लेकर खुद भी डूब जाओ, क्योंकि वास्तव में भगवद गीता को लेकर जब खड़ा हुआ तो पानी ऊपर आने लगा, तो कुछ पकड़ने लायक था नहीं अब, तो भगवद गीता छोड़ दिया, और भागवतम पकड़ने लायक नहीं था, भागवतम को भी छोड़ दिया। अब जल इतना ऊपर आ गया, बाढ़ का पानी उतना ऊपर आ गया कि बस आंखों के नीचे ही था पानी, अब तो डूबना ही है, तो क्या करें आप? तो बोलते हैं आप चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लेके डूबो, डूबना तो है आपने, तो अच्छा है कि चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लेके डूबो, क्योंकि इस ग्रंथ को लेके जब डूबेंगे तो वास्तव में हम तैरना शुरू कर देंगे, डूबेंगे नहीं, है ना। ये तो बाढ़ कृष्ण प्रेम की बाढ़ है, जब भी बाढ़ आती है मायापुर धाम में तो ये संकेत देता है कि पूरा जगत भी कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डूबेगा। लेकिन इसमें लोग मरेंगे नहीं, जो इस बाढ़ में प्रवेश करना चाहते हैं उन सबका उद्धार हो जाएगा। तो मायापुर में जब जब बाढ़ आता है ये संकेत देता है कि समय आएगा पूरे जगत में कृष्ण भावना का प्रचार होगा, और प्रभुपाद ने कर दिया। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री अद्वैत आचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद।